वीर दौड़कर बाहर गया। बाहर उसने देखा कि उसका पूरा गार्डन काले कपड़े पहने उसके बॉडीगार्ड से भरा पड़ा था। मारिया और टाइगर ने उसके सिक्योरिटी वालों के लाशों के ढेर लगा दिए थे। अब वीर के माथे से भी पसीना टपकने लगा। जैसे ही वो पीछे मुड़कर अंदर जाने लगा तो तुरंत अरमान से टकरा गया और दूर जा गिरा। अरमान का शरीर एकदम पत्थर के जैसा था। वसुंधरा को भी हैरानी हुई कि अचानक सब कुछ इतना शांत क्यों लग रहा है। बाहर आकर जब उसने अपने सभी आदमियों की लाशें देखीं, तब वसुंधरा भी भीगी बिल्ली बन गई थी। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। मारिया और टाइगर वहां आकर खड़े हो गए और बोले, किंग, काम हो गया है और साथ ही इसका बाप अमरेश भी यहां आ रहा है। तब तक बताइए किंग, क्या सेवा करूं? अरमान ने एक नज़र मारिया की ओर देखकर कहा, एक काम करो, थोड़ी सी वीर रायचंद की माँ की खातिरदारी करो। इनको इस वक्त खातिरदारी की बेहद ज़रूरत है। जैसे ही अरमान ने ये कहा, वसुंधरा की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो सोचने लगी कि उसका बेटा उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मारिया कितनी खतरनाक थी, उसका सबूत तो उसकी आंखों के सामने था। मारिया ने जल्दी ही वसुंधरा को उसके बालों से पकड़ते हुए अंदर ले गई। साथ ही साथ मारिया ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और उसे वो नज़ारा इमेजिन करने लगी जब वसुंधरा ने छोटे से बच्चे को बड़ी ही बुरी तरह से हंटर से मारा करता था। तब मारिया के पास कोई हंटर तो नहीं था, लेकिन मारिया ने जल्दी अपनी बेल्ट निकाल ली और फटाफट से उसने वसुंधरा की चमड़ी उधेड़नी शुरू कर दी। अरमान के कानों में वसुंधरा की चीखों की आवाज़ें आ रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था और उस वक्त वो भी अपने पास्ट में खो गया था। अरमान को खुद अपनी चीखें सुनाई दे रही थीं जो वसुंधरा ने बड़ी ही बुरी तरह से मारा करती थीं। वहीं टाइगर ने भी अरमान का इशारा पाकर आगे बढ़कर वीर की धमाकेदार थुलाई करना शुरू कर दी थी। तभी अमरेश रायचंद वहां आ पहुंचा। उसके साथ कितने सारे गार्ड्स थे। अमरेश ने आकर अरमान को गन पॉइंट पर ले लिया और बिना डरे बोला, छोड़ दो इन दोनों को, अगर तुमने इन दोनों को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन अरमान पर अमरेश की किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। अमरेश ने तो सोचा था कि वो वीर को एक बार लेकर यहां से भाग जाएगा, उसके बाद वो एक बार फिर से पूरी तैयारी के साथ अरमान सिंघानिया पर हमला करेगा। लेकिन अब बिना अमरेश को बताए वसुंधरा और वीर ने जो ये चाल चली थी, तो अब उन्हें उन दोनों पर ही गुस्सा आ रहा था। और जब अमरेश को ये लगा कि अब अरमान सिंघानिया उसके बेटे वीर को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा, तब वो अकड़कर धमकाते हुए बोला, याद रखना अरमान, अगर तूने मेरे बेटे को नहीं छोड़ा तो मैं तेरे बाप की जान ले लूंगा। जैसे ही अमरेश ने ये कहा, वसुंधरा की आंखें फटने को तैयार थीं। वहीं अरमान बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके सामने खड़ा था। तब अमरेश को हैरानी हुई कि उसने अरमान को उसकी जिंदगी की कितनी बड़ी खबर दी है कि उसका बाप उसके पास है, लेकिन फिर भी अरमान के चेहरे पर किसी तरह का कोई इमोशन क्यों नहीं था। तभी अरमान ने थोड़ा सा आगे बढ़कर सीरियस एक्सप्रेशन से वीर को देखा और उसका गिरेबान पकड़कर एक मुक्का उसके मुंह पर मार दिया। अरमान का एक घूंसा वीर बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं बेहोश हो गया। अब अरमान अपनी बंदूक निकालकर वीर की तरफ पॉइंट करने लगा। वहीं अमरेश ने एक बार फिर चीखते हुए कहा, क्या तुझे सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा तेरा बाप मेरे पास है, अगर तूने मेरे बेटे की जान ली तो मैं तेरे बाप की जान लेने में एक मिनट नहीं लगाऊंगा। तब अचानक अरमान जोरों से खतरनाक आवाज में हंसने लगा और अरमान को इस तरह से हंसता हुआ देखकर अमरेश अपने घुटनों के बल बैठ गया। वो समझ चुका था कि अब अरमान को कुछ भी कहने का फायदा नहीं है। फ्लैशबैक। अरमान सिंघानिया को जब इस बात का एहसास हुआ कि अगर अभीर सिंह राठौड़ वीर की जान ले लेगा तो वो कभी भी अपने दुश्मनों को वो सजा नहीं दे पाएगा जो वो देना चाहता है। आखिरकार अरमान सिंघानिया का ऐसा होने का कारण अगर कोई था तो वो थी वसुंधरा रायचंद और साथ ही अमरेश रायचंद। लेकिन जब अरमान सिंघानिया ने मारिया को अमरेश रायचंद का बिजनेस ठप करने के लिए स्विट्जरलैंड भेजा था, उसी वक्त मारिया को एक ऐसी लीड हाथ लगी थी जिसकी बदौलत अरमान की जिंदगी पूरी तरह से पलट चुकी थी। जी हाँ, वो लीड कोई और नहीं बल्कि अरमान के पिता अभिमान सिंघानिया थे। फ्लैशबैक। उस वक्त वसुंधरा ने जब अभिमान को डंडे से मार मारकर हत्या करने की कोशिश की थी, उस वक्त के लिए अभिमान बेहोश हो गया था, लेकिन दादाजी अरमान की जान बचाने के लिए उसे लेकर भाग गए थे। वहीं अमरेश, जिसने उस दिन वसुंधरा को बहुत ज्यादा भड़का दिया था और शराब पिला दी थी, वो जानता था कि वसुंधरा कितनी ज्यादा हिंसक है और घर जाकर वो इसी तरह का कोई ना कोई ड्रामा करेगी। इसीलिए जब वसुंधरा अरमान को मारने के लिए दादाजी के पीछे दौड़ रही थी, उसी वक्त अमरेश उसके पीछे घर पहुंच चुका था जहां पर अभिमान बेहोश पड़ा हुआ था। वसुंधरा समझ चुकी थी कि वो मर चुका था, हालांकि वो बेहोश था, इसीलिए वो वहां से भाग निकली थी। तभी अमरेश ने मौका देखकर अभिमान को अपने कब्जे में ले लिया था और पिछले 20 सालों से अभिमान अमरेश के कब्जे में है। फ्लैशबैक एंड। तो इसीलिए अरमान सिंघानिया ने उस दिन वीर रायचंद की जान बचाई थी और साथ ही साथ अमरेश को आसानी से छोड़ दिया था ताकि वो अपने पिता तक पहुंच जाए, क्योंकि अरमान जानता था कि अमरेश देश छोड़ जाने के बाद कहीं और नहीं
बल्कि सबसे सेफ प्लेस पर जाएगा और उस सेफ प्लेस पर जरूर जाएगा और उसके पिता को भी वहां रखा होगा ताकि सही वक्त पर अरमान के पिता का इस्तेमाल कर सके। तो इसीलिए अरमान ने अब सारी चीजों का पता लगवा लिया था और जब अमरीश ने सीधा सीधा पोलैंड के टिकट बनवाए तो वो समझ चुका था कि उसके पिता भी वहीं हैं और अरमान के लिए इस बात का पता लगा लेना बहुत ज्यादा आसान था कि अमरीश रायचंद की पोलैंड में कहां और किस जगह क्या प्रॉपर्टी है। इसीलिए अरमान सिंघानिया ने फौरन देव को पोलैंड भेज दिया था, वो भी पूरी तैयारी के साथ, और देव ने वहां जाकर अरमान के पिता अभिमान को अपने कब्जे में ले लिया था और इस बात की खबर अरमान को दे दी थी। तो इसीलिए अब अरमान अब सीधे सीधे वीर रायचंद से मिलना चाहता था और यहां आकर तो उसके सारे पत्ते साफ हो चुके थे। तभी अमरीश इमोशनली वीक होकर बोला, 20 साल तक तेरे बाप को मैंने अगवा करके रखा, मुझे लगा था कि मैं जीत गया हूं, इतनी आसानी से मैं उसकी जान नहीं जाने देना चाहता था। उसकी बीवी के साथ जब मैं इंटीमेट हुआ करता था उसे मैं सारी वीडियो भेजा करता था और वो तिल तिल कर मरा करता था, लेकिन आज तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सारी प्लान, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी और दुश्मनी के चक्कर में आज मैं जिंदगी के उस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया हूँ कि अब मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। ऐसे बोलकर फिर अमरीश ने एक नजर वीर की तरफ देखा जो बेहोश पड़ा हुआ था। तभी अमरीश ने अपनी बंदूक निकालकर अपने माथे पर लगा ली और खुद की जान ले ली। वहीं वसुंधरा ने अमरीश के गोली लगते ही जोरों से चीख मार दी, क्योंकि भले ही अमरीश ने उसका इस्तेमाल किया हो लेकिन वो उसका पति था। हालांकि उसे औरत के लिए किसी तरह के रिश्ते नाते का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब उसकी सच्चाई अरमान सिंघानिया के साथ साथ वीर के सामने भी थी, तो वसुंधरा को मुखौटा ओढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं थी। वहीं मारिया की मार से वसुंधरा पूरी तरह से फेंट हो गई थी। तब जाकर मारिया ने वसुंधरा को मारना छोड़ा और बिना एक्सप्रेशन के अरमान के पास आकर खड़ी हो गई थी, और वो दोनों ही नेक्स्ट ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे कि इन दोनों वीर और वसुंधरा के साथ अब अरमान क्या करना चाहता है, वो उन्हें ऑर्डर करे। वहीं अरमान ने बारी बारी से उन दोनों की ओर देखा और सर्द आवाज में बोला, इन्हें शहर से बाहर फेंकवा दो, याद रखना ये लोग जिंदा रहने चाहिए। भले ही अमरीश ने खुद की जान लेकर अपनी मौत को आसान कर लिया हो, लेकिन इन्हें अभी इतनी आसानी से मौत नहीं आनी चाहिए।
ये बोलकर अरमान जल्दी ही गाड़ी में जाकर बैठ गया और टाइगर ने अरमान की बात मानते हुए अपना काम करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर सुमित के ही होटल में इस वक्त अविनाश रघुवंशी भी मौजूद था। अविनाश हर रोज होटल में आया करता था, क्योंकि जब से उसे होटल की वो छोटी सी वीडियो क्लिप वायरल हुई थी जहां पर वो लॉकेट थोड़ी सी झलक दिखाई दिया था, तब से अविनाश लॉकेट की सच्चाई जानने के लिए वहां आया करता था। लेकिन किसी ने उसे एक बार भी कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि उस वीडियो के सोशल मीडिया पर लाइव होने के बाद सुमित ने सबको अच्छी तरह से फटकार दिया था और साथ ही साथ उसने काफी हद तक अपने स्टाफ को चेंज कर दिया था, तो इसीलिए कोई भी इस लॉकेट के बारे में ना तो बात करना चाहता था और ना ही कोई उसके बारे में ज्यादा कुछ जानता था। लेकिन अविनाश हर रोज फिर भी सुमित के होटल में आया करता था कि शायद एक दिन उसे यहां जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा, और वो जाकर उसी जगह पर बैठा करता था जहां पर आस्था बैठी थी। वहीं दूसरी ओर इस वक्त आस्था और रौनक एक साथ मौजूद थीं और दोनों ही एक बड़े ही खूबसूरत से स्पेस में बैठे हुए थे। वो एक VIP स्पेस था जहां पर सुमित ने बड़े अच्छे तरीके से परफेक्टली तैयारी करवाई थी। सब कुछ बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। और थोड़ी ही देर बाद राधिका और रश्मि भी वहां आ गईं, और राधिका को देखते ही दोनों खुशी से उनके गले लग गईं, और तब आस्था ने राधिका को उसकी नई नौकरी के लिए मुबारकबाद दी। और राधिका एक पल को थोड़ा सा हिचकिचाने लगी कि इतनी महंगी जगह का बिल वो कैसे पे कर पाएगी, आखिरकार उसकी अभी नौकरी लगी है, उसकी सैलरी नहीं मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं राधिका की हड़बड़ाहट आस्था और रौनक और साथ ही साथ रश्मि ने देख ली थी, और रौनक तसल्ली देते हुए बोली, क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो, तुम्हारी जॉब लगने की खुशी में हम तुम्हें पार्टी देने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। अब जैसे ही उन्होंने ये कहा, राधिका के चेहरे पर एक पल में ही बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और वो जज्बाती होकर बोली, सच में मुझे नहीं पता था कि अगर मैं अपना एक परिवार खोऊंगी तो मुझे एक नया परिवार मिल जाएगा। तभी रौनक तपाक से बोली, लेकिन राधिका दीदी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर आपका परिवार है और आपके माँ बाप हैं, आपका छोटा भाई है, तो फिर आप उनके पास क्यों वापस नहीं जाती हैं? तब राधिका मायूस होकर बोली, आपको क्या लगता है कि मैंने जाने की कोशिश नहीं की होगी? जहां मेरा परिवार पहले रहा करता था वहां वो अब नहीं रहते हैं, वे अलग शहर में शिफ्ट हो गए हैं और उन लोगों ने मुझे मरा हुआ मान लिया है, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया था कि मेरे मोहल्ले में मेरी बहुत बदनामी हुई थी जिसकी वजह से मेरे पिता मुझे सिर्फ नफरत करते हैं। इतना बोलकर राधिका रुंसी हुई थी, लेकिन तब तक आस्था ने राधिका को गले से लगा लिया था और अपना पन जताते हुए बोली, हमारे रहते आपको आपके परिवार की कमी कभी भी महसूस नहीं होगी, हम हैं ना आपका परिवार, आप क्यों उदास होती हैं राधिका दीदी? ऐसा बोलकर आस्था ने राधिका को प्यार से होल्ड किया।
थोड़ी देर बाद अब उन चारों ने जमकर मस्ती करना शुरू कर दिया था। और क्योंकि आस्था और रौनक थोड़ी सी चुलबुली किस्म की लड़कियां थीं और उन्हें थोड़ा सा धमाल करना, डांस करना, ये कुछ ज्यादा ही पसंद था। हालांकि डॉक्टर रश्मि ने आस्था को बोला कि वो जिस तरह से चाहे इंजॉय कर सकती है, लेकिन उसे अपने शरीर पर ज्यादा जोर नहीं देना है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, इस बात का भी उसे ख्याल रखना है। इसीलिए आस्था अब थोड़ा सा मुस्कुराती हुई और उसने फटाफट से रौनक के साथ मिलकर डांस करना शुरू कर दिया। आस्था को डांस का कुछ ज्यादा ही शौक था, वहीं उन लोगों ने फुल स्पीड पर म्यूजिक बजा दिया था। हालांकि वो इस तरह से होटल में फुल लाउड म्यूजिक अलाउड नहीं था, लेकिन उस वक्त वो दोनों मस्ती में चूर हो चुके थे। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था कि इस वक्त हद से ज्यादा लोग उन्हें ही देख रहे थे। हालांकि वो अभी वीआईपी एरिया में थे, लेकिन वहां पर थोड़ा सा हिस्सा ट्रांसपेरेंट था, यानी कि वहां कांच की दीवारें थीं, जिसकी वजह से मस्ती करते हुए काफी लोगों ने उन्हें देखा। वहीं अविनाश की नज़र भी उन लोगों पर पड़ी। एक पल के लिए अविनाश आस्था को देखते ही पहचान गया था कि ये तो वही लड़की है जो उसे मंदिर में मिली थी। और आस्था जितने प्यार से मासूम से बच्चे की तरह वहां पर डांस कर रही थी, अचानक अनजाने में ही सही, लेकिन अविनाश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं दूसरी ओर एंजल और डिम्पल सुमित के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए थे, और खाना खाते हुए जब उनके कानों में भी लाउड म्यूजिक की आवाज़ गई तो अब एंजल थोड़ी सी इरिटेट हो गई थी, क्योंकि एंजल को क्वाइट स्पेस, शांत स्पेस बेहद पसंद था। इस तरह से लाउड म्यूजिक और इस तरह शोर शराबा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तभी डिम्पल भी अब थोड़ा सा हड़बड़ा गई, क्योंकि वो उस होटल में उसे इसलिए लेकर आई थी ताकि वो अपना अच्छा इंप्रेशन एंजल पर छोड़ सके, लेकिन यहाँ तो वो भी अब इरिटेट हो गई थी और उसने भी घूर कर आस्था, रश्मि, राधिका, बाकी सबकी ओर देखा जो वहां उस वक्त मस्ती कर रहे थे। वहीं राधिका और रश्मि ज्यादा कुछ नहीं कर रही थी, वे मुस्कुराते हुए केवल शांति से उन दोनों को हंसी मजाक करते हुए देख रही थीं।